विनोचनों ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी दिव्य कहानी विनोचनों
जिसको सुनकर ज्ञानी भी जिसको सुनकर ज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी
विनोचनों
ओम शांति। ये हमारा परम सौभाग्य रहा जो बाबा से साकार मिलना भी हुआ, और जैसे कहते हैं पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तो सभी रूपों का माता पिता शिक्षक गुरु सखा सर्जन, ये प्रैक्टिकल में हमने सभी रूपों का अनुभव किया। सबसे पहला अनुभव मैंने ये किया कि बाबा जाने जाननहार हैं, भृगु ऋषि हैं, हरेक के जन्म पत्री को जानते हैं। और दूसरा अनुभव किया कि बाबा रूहानी सर्जन है। जब हम 56 में ज्ञान में आए, करनाल में थे, मनोहर दादी जी से ज्ञान लिया था, बस एक ज्ञान लेते ही एक ऐसी भावना मन में, या ये भी एक विचित्र अनुभव ही था जो कल्प पूर्व की स्मृतियां आई, और एक पहली मुलाकात में निश्चय किया कि जीवन बनानी है तो ये बनानी है। ज्ञान बाद में सुना, तो जैसे ही 7 दिन का कोर्स किया कि रेगुलर क्लास करते रहे, तो हमको उस समय बहुत छोटी आयु थी, इसलिए मालूम भी नहीं था कि यज्ञ की कारोबार भी नहीं जानते थे कि बाबा को कभी पत्र लिखा भी जा सकता है या बाबा का पत्र हमारे पास आ भी सकता। तो परंतु एक मन की वो एक भावना थी बाबा को पत्र लिखा, और उसने अपने मन की इच्छा लिखी कि बाबा मैं सेवा में लगना चाहती हूँ, बाबा के यज्ञ में रहना चाहती हूँ, और इसके साथ साथ जो स्पष्ट स्थिति थी वो भी लिखी कि शारीरिक व्याधि भी है। क्योंकि दो शब्दों में मैं ये कहूँ कि जब पार्टीशन हुआ था 1947 में, वो दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा था, परिवार के 14 सदस्य उसमें गए, वो दृश्य आंखों से देखा, उसका काफी गहरा शौक था, जो बचपन का शौक बहुत काम करता है, तो इसलिए शरीर पर काफी इफेक्ट था। तो जब बाबा को सब बात लिखी, अगर सोचे पहले कोई भी सोचेगा बीमार को कौन लेगे, परंतु बाबा जन्म पत्री जानते थे। स्पष्ट लिखने के बाद भी हमने देखा कि आज हमने पत्र लिखा है, ठीक 7 दिन के बाद बाबा का लाल अक्षरों में लिखा पत्र हमारे नाम, बाबा ने ये लिखा, बच्ची का पत्र पाया। बच्ची अगर यज्ञ में रहना चाहती है तो रह सकती है, बच्ची अगर बीमार है तो उसका दिल्ली में इलाज कराया जा सके, बशर्ते पहले माँ से मिले। माँ अर्थात जगदम्बा सरस्वती जी के लिए इशारा था। बस एक हमारा सौभाग्य कहो, पत्र आया। एक उस समय आप सोच सकते हो मन में कितनी न खुशी होगी, वो आप अंदाजा लगाइए। ठीक 15 दिन बाद मम्मा और बाबा दोनों की दिल्ली में पधरामणी हुई, रजौरी गार्डन। उस समय हमारी दादी प्रकाशमणि जी वहाँ पर इंचार्ज थे, पूरा कार्य वो संभाल रहे थे, तो वहाँ बाबा मम्मा से मिलने हम गए। तो हमने ये देखा, जैसे बाबा मम्मा की दृष्टि पड़ी, बाबा से मिलन हुआ, वो मिलन की घड़ी एक ऐसी थी, क्या वो अनुभूति थी जो मुख से वर्णन नहीं कर, जैसे अब इस दुनिया में है ही नहीं, कहां दूसरी दुनिया में चले गए हैं, ये जगत ही कुछ अलग है, ये संसार ही अलग है, बस बाप और बच्चे का मिलन था। उस समय बाबा की दृष्टि पड़ना और धीरे धीरे मेरे स्वास्थ्य में एक तो इम्प्रूवमेंट आ। सच पूछो मैंने कोई उसके बाद दवाई भी नहीं ली थी, दवाई बंद परहेज बंद, पर बाबा की दृष्टि से पूरा मेरा इलाज हो। इतनी बारीक सी थी परंतु आज आप देख रहे हो कैसी है। तो वो एक जो बाबा ने कहा दिल्ली में इलाज कराया जा सकता है, तो हमने सोचा तो शायद दिल्ली में जाके कोई डॉक्टर का इलाज करना होगा, पर दिल्ली की धरती पर बाबा ने दृष्टि से इलाज कर। तो क्यों नहीं मैं कहूँ रूहानी सर्जन है, क्यों नहीं कहूँ मैं वो जानी जाननहार है, हमारी जन्म पत्री को जान। फिर उसके बाद सवेरे क्लास के बाद चैम्बर में बैठते थे बाबा के सामने, तो उस समय बाबा ने आह्वान, जो बच्चियां बाबा की सेवा में समर्पित होना चाहती हैं, आज बाबा की गोद में वो बच्चियां। ये डायरेक्ट बाबा का आह्वान, बस बाबा का कहना, हमने किसी से पूछा नहीं, हालांकि लौकिक माताजी भी बैठे थे और परिवार के सदस्य थे, पूछा नहीं, पर बाबा का आह्वान वो एक आकर्षण थी। उठे और बाबा की गोद में चले। उस समय तीन बहनें ऐसी थी जो बाबा की गोद में गई, उस समय तीन तो मानो 3000 के बराबर, उस समय ऐसा। तो इतना सबने खुशियों में ताली बजाई, बाबा ने कहा बच्चे लाओ पेड़े लाओ पेड़े लाओ। उसी समय बाबा ने पेड़ा जो दूध का होता है अपने हाथ से बांटा, वो सब जो बाबा के साथ हमारा जीवन का सौदा हो गया। वो दिन के बाद कभी हम लौकिक घर में कभी रहे नहीं, बस बाबा के थे बाबा के हो गए। फिर एक मन के अंदर ये आया कि बाबा सिंधी में लाल अक्षरों में पत्र लिखते थे और हमको तो आती नहीं थी, हमको तो आती थी केवल हिंदी। तो मन में अगर मैं बाबा की बच्ची बनी हूँ और मैं बाबा का पत्र नहीं पढ़ सकती तो मैं बच्ची कैसी। इसलिए गोपी दादी जी थे, मैंने उनको कहा दादी मुझे बाबा का पत्र पढ़ना आना चाहिए, इसलिए मुझे सिंधी सिखाओ। तो मैंने सिंधी पढ़ना सीखा, फिर मैं बाबा के पत्र स्वयं पढ़ सकती थी और आज भी पढ़ सकती। पर ये एक जो लगन थी वो एक मेरे लिए लिफ्ट बन गई। उसी लगन ने, वो सिंधी सीखने ने मुझे मधुबन निवासी बनाया। बाबा से मिलने आई थी, उस समय सवा मास रह चुकी थी पहले, कल जाना है, सवेरे की टिकट है। शाम को बाबा ने बोला बच्ची इधर आओ। जी बाबा। बच्ची मधुबन में रहोगी? जी बाबा। बड़ी दीदी बैठे थे, कार्ड की टिकट कैंसिल कर दो। तो वो भी बाबा का डायरेक्ट काम था जो मेरे मन में नहीं था, पर ये हमने शुरू से जब से यज्ञ में पांव रखा एक दृढ़ संकल्प रखा, कभी भी कोई भी सेवा मिले कभी ना करने नहीं, ना शब्द मेरे जीवन में नहीं है, बड़ों की आज्ञा सिर माथे, कभी डिमांड करने नहीं कि ये मुझे सेवा का चांस दिया जाए। अगर बड़े हमारे भी योग्यता समझेंगे तो अपने आप देंगे, मैं क्यों सोचूं। जब अपनी जीवन को सौंप दिया उस जीवन से बाबा ने जो कार्य लेना लेगा। तो ये एक बात ने मुझे बहुत बहुत हल्का भी जीवन में रखा है, बड़ों के समीप लाया है, मधुबन निवासी बनाया है। मधुबन निवासी बाबा के समय बनना, कितना ना बाबा से हमने पालना ली होगी। तो बाबा का डायरेक्ट आह्वान था इसलिए मधुबन में रहे। फिर मुरली बाबा ने कहा बच्ची मुरली लिखो, क्योंकि ईश्वर दादी बाबा की मुरली के सिंधी में नोट्स लेते थे, वहां से पढ़ना है और हिंदी में लिखना है, तो इसलिए लिखा। आते जाते बाबा की दृष्टि मिलती थी, फिर और कॉपीज बढ़ती गई, तो पहले हाथ से स्टेंसिल काटते थे, प्रेस तो बाद में हुई है, उस समय तो सेक्लो स्टाइल था, तो टाइप मशीन आई। फिर बाबा ने मुझे बुलाया बच्ची टाइप सीखनी है। मैंने कहा जी बाबा। कहा कितने दिन में सीखोगी? तो दादा विश्व रतन को भी बुलाया तो दादा ने कहा कि मैं सिखा दूंगा। का कितने दिन में? बाबा को हर बात कोई दिल्ली तो बिल्कुल बाबा को पसंद नहीं था, फटाफट जो काम करना फटाफट। तो उन्होंने कहा कि बाबा 15 दिन में। मेरे को बोला बच्ची सीख जाओगी, हालांकि मैंने कभी तो हाथ भी नहीं लगाया था टाइप मशीन पे और हिंदी थी। मैंने कहा जी बाबा, पर जब हम करती थी, हालांकि हिंदी मुरली लिखना भी हाथ से, उसमें भी पूरा समय देना है, फिर थोड़ा ही समय मिलता था जो सीखते थे, पर आते जाते बाबा पूछते रहते थे बच्ची, कभी कहेगा बच्ची के लिए इनाम तैयार हो रहा है, कभी कहेगा बच्ची तुम क्या इनाम लोगी। मैंने कहा बाबा आप इतनी बड़ी स्वर्ग की बातें दे रहे हो तो और क्या चाहिए। पर एक बाबा की प्रेरणा थी, वो बाबा की शक्ति थी, मैं अपनी नहीं मानती, वो बाबा की ही देन। 9 दिन में सीखी, 10वें दिन मुरली टाइप की। ये बाबा थे। तो ये मैं कहती हूँ बाबा के साथ खाया भी है, बाबा के साथ खेला भी है। बाबा ने पहलवान बनाने के लिए पहाड़ों पे भी ले गए, बाबा के साथ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे भी चढ़े, पढ़ाई के ऊपर भी बाबा ने पूरा ध्यान दिलवाया। कई ऐसे मिसाल है जो शिक्षक बन के बाबा ने शिक्षा दी होगी, बाप के रूप में प्यार दिया, सखा के रूप में खेला। वो दिन आज भी याद आते हैं, सच पूछो दिल भर जाते हैं। एक बारी बाबा दोपहर का समय था, खटिया पे लेटे थे, मैं बाबा के बाजू में जाके बैठ गई। बाबा ऐसी दृष्टि देते रहे जो पूरे कमरे में सन्नाटा जैसे छा गया, केवल बाबा मुझे देख रहे, मैं बाबा। बाबा लेते हैं जैसे बच्चा बाप के बाजू में कैसे बैठता है, ऐसे बैठ गए। दृष्टि देते देते अचानक बाबा ने ऐसा किया, मनोरजा दिख रहे थे, हालांकि पहले ना बाबा का ध्यान था ना मेरा। बाबा ने कहा ये बच्ची बहुत भाग्यशाली, बस यही 2 शब्द बाबा ने बोले। और मैं सचपच अनुभव करती हूँ, बहुत तो क्या पद्मा पदम भाग्यशाली, भाग्य विधाता ने भाग्य बना दिए। तो इसलिए मुरली भी लिखते रहे। फिर उस समय में ग्रामोफोन रिकॉर्ड होता था, ये टेप मशीन तो बाद में आई है, तो ग्रामोफोन रिकॉर्ड बजाने की हमारी ड्यूटी थी। तो प्रतिदिन मॉर्निंग में क्लास के पहले बाबा के पास जाना, बाबा से गुड मॉर्निंग करना, बाबा आज क्या गीत बजाना है, बाबा बताते थे। और फिर एक्यूरेट बन के क्लास में बाबा के पहले पहुंचना है, और उसमें इतना अलर्ट बाबा बनाते थे, जब गीत शुरू होता था नजर बाबा की तरह, आधी लाइन में नहीं बजेगी, कभी एक लाइन कभी आधा लाइन स्लाइटली ऐसे करेगा। वो जो स्लाइटली बाबा करते थे, इतना ध्यान देना पड़ता था, उसका अर्थ होता था गीत बंद करो, ऐसे किया बंद। अगर हमारा अटेंशन इधर उधर हो जावे तो नहीं हो सकता था, इसलिए उधर भी अटेंशन रहा। ये भी हमारा परम सौभाग्य है कि बाबा ने एक्टिव बनाया, उसके अंदर भी अटेंशन रहा, हर चीज के अंदर पढ़ाई पर पूरा ध्यान रहा। तो इस प्रकार से हमने देखा बाबा बहुत प्यार से, बहुत अच्छा। कोई बच्चा अच्छा काम करे तो बाबा महिमा करने में भी पीछे नहीं होते थे। बाबा क्या देते थे, महिमा करते, उमंग बढ़ाते थे। और बताया बाबा को हर बात फास्ट, ये बहुत बाबा की विशेषता थी। बाबा को भोजन बना के भी खिलाया और भी सेवाएं की, सब प्रकार मधुबन निवासी बने। और फिर हम ये देखते थे कि बाबा बच्चों को खिलाने में बहुत प्यार, अचानक ही बोलेगा चलो आज बाबा बच्चों को मक्खन माने खिलाएगा। कभी घुटते वो निकलते थे मकई अपने घर में लगाई थी, अपने हाथ से बाबा गरम गरम भून के आता था, बच्चों को खिलाते थे। पूरी प्यार भरी बाबा ने पालना ली। इसके बाद हम अनुभव करते थे, एक और भी हमारी ड्यूटी लगाई बाबा ने, रोज रात को पूरे मकान में एक ऐसा डंडी वाला कटोरा रहता था बड़ा सारा, उसमें कोयले वगैरह रहते थे, उसके ऊपर जो हवन करते ना हवन सामग्री वो डालो और सब कमरों में चक्कर लगा के आओ, और एक एक खटिया के नीचे ताकि बच्चों को मच्छर न काटे, रोज की वो ड्यूटी थी। वो करके आते थे, फिर बाबा के कमरे में जाना, बाबा पूछते बच्चे सब कमरों में करके आए जी बाबा, तो गुड नाइट करके फिर सोते थे। जब पार्टी जाती थी जिस दिन आई उस दिन बाबा खुद पूरे भवन का चक्कर लगाते थे। ये ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ था, वहाँ बाबा एक एक कमरे में जाते और उसके बाहर में वो रात की रानी का झाड़ लगाए हुए थे। कोई कमरे की अगर खिड़की बंद हो बाबा खुलवाते थे अपने आप से, बच्चे खोलो देखो बात रात की रानी लगी उसकी सुगंध आएगी। तो बाबा ध्यान रखते थे कि बच्चे सोए तो सुगंधित वातावरण, मच्छर बच्चों को न काटे वो भी ध्यान। फिर हमने देखा कि कई बच्चे बाहर से आते थे, गरम कपड़ा नहीं रहता था और यहाँ ठंडी बहुत थी, तो बाबा जब चक्कर लगाते देखते थे इस बच्चे के पास स्वेटर नहीं, कई बार बाबा ने अपना स्वेटर उतार करके बच्चों को दिया। बच्चे लोग कहते, बच्चे कहते नहीं बाबा नहीं बाबा नहीं, बच्चे लोग बाबा उनको पहना के छोड़ते थे। तभी कहा जाता इतना प्यार करेगा कौन। तो बाबा ने स्थूल में भी ध्यान रखते थे और बाबा आंतरिक स्थिति पर भी ध्यान रखते थे, बच्चे मन से भी खुश रहे। एक बार की बात है, बाबा का कितना ध्यान, कोई बात हुई थोड़ा दिल भारी हो गया, ये मेरा खुद का ही अनुभव है, तो मैं मम्मा को बता रही थी। मम्मा को बताते बताते एक माँ के सामने मैं, जब दिल भारी हो तो क्या होगा आप सोचिए, दो आंसू आ ही जाएंगे। तो मम्मा के सामने दो आंसू आ गए, किसी ने देखा, बाबा को जाके बताया। बस थोड़ी देर पड़ी, मैं जैसे उधर गई मैं तुरंत से बच्ची इधर, तुरंत बुलाया का बच्ची आज तूने मम्मा के सामने रोया क्या। मैंने कहा बाबा हाँ। का बच्ची क्या बात थी, मैंने बता दी। अच्छा बच्ची जाओ जाओ, बाबा ने देखा बच्ची से हल्की, मन बच्चों का मन भी भारी ना हो, अवस्था भी ऊपर नीचे ना हो, पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान हो, वो भी बाबा पूरा देखते थे। एक बार के पढ़ाई की मैं बात बताऊं, रोज बाबा की मुरली होती थी और छपाई होना और 10 बजे पोस्ट चली जाती थी। तो एक बार अचानक कुछ जरूरी काम था कि बच्चे बहुत थोड़े थे और कारोबार तो पूरी थी, तो हमारे जोना प्रसाद भाई मुरली पैकिंग का काम करते थे, सैक्लो स्टाइल करना, पैकिंग करना, और पोस्ट फिर हमारे दादा भी शरतन जी ले जाते थे पोस्ट ऑफिस में। तो बाबा क्रॉस किए तो देखा उस दिन पैकिंग का काम नहीं चल रहा, तो ऑफिस में आए, दीदी को पूछा क्यों दीदी आज मुरली का काम नहीं हो रहा पैकिंग का। कहा बाबा आज ऐसा सा काम है तो शाम को भेजे। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, बाबा की मुरली बच्चों के पास लेट नहीं जा सकते, बच्चे बाबा की मुरली का इंतजार करते हैं। तो हमें याद है उस समय हम भी ये जो रेलवे रिजर्वेशन ऑफिस है उसके सामने के जो कमरे हैं वो उस समय में बेडरूम थे, तो हम भी वहाँ बैठे और भी थे, अपने अपने कामों में सब लगे हुए थे। बाबा ने खुद चक्कर लगाया, जो भी कोई काम कर रहा था सबका छुड़वाया क्योंकि समय कम था, सब बच्चों को बुलाया और खुद बैठे फटाफट मुरलिया आधे 15-20 मिनट के अंदर पैकिंग होके रवाना हो। नहीं तो एक बार हम सोच रहे थे चलो अभी नहीं शाम को से, पर बाबा ने वो नहीं, तुरंत बच्चों को समय पर मुरली मिलनी चाहिए। और एक बार बाबा को थोड़ी तकलीफ थी दांत वगैरह का, तो डॉक्टर ने बोला था कि बाबा एक दिन मुरली न चलाए, बात नहीं करे। डॉक्टर को तो हाँ बोल दिया, परंतु बाबा काम मानने वाले थे। तो बाबा ने क्या किया, सवेरे कमरे में बैठ के मुरली लिखी, इतनी बड़ी लिखी जो पूरी 4 पेज मुरली वो छप सकी, लिख करके फिर क्लास में आए। और वो लिखकर दीदी नीचे बैठे थे, सामने में दीदी बैठते थे, मनमनी दीदी की मैं बात कर रही, तो एकदम उनकी गोदी में दी का लो बच्ची अपना खजाना, ये शब्दों में दे के फिर बाबा फिर मुरली चलाई। तो रोज जो जाती थी 4 पेज उस दिन गई, कितने पेज, 8 पेज, और ये बाबा ने डबल खजाना दिया। तो इस प्रकार से बाबा का ध्यान बच्चों की उन्नति पर, मन की अवस्था, योग और पालना, सब प्रकार से बाबा बच्चों को रिफ्रेश रखते थे। तो ऐसी बाबा की मधुर पालना का जो हमें सौभाग्य मिला, तो मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य से। ओम शांति।